नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के तहत हाजीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण और मुजफ्फरपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच कल होगा मतदान। 95 लाख से अधिक मतदाता चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूढ़ी, रोहिणी आचार्य, अली अशरफ फातमी, देवेश चंद्र ठाकुर समेत 80 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। छठे और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बेतिया में जनसभा को संबोधित किया। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने गोपालगंज, वाल्मीकि नगर और सीवान सहित कई क्षेत्रों में की जनसभा। और मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में कल मतदान होगा। इस चरण में 95 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 49,99,627 और महिला मतदाताओं की संख्या 45,11,259 है। वहीं थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 300 है। पहली बार मतदान करने वाले लोगों की संख्या 1,26,154 है। पांचवें चरण में प्रदेश के 5 संसदीय क्षेत्रों में 6 महिला उम्मीदवारों समेत कुल 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सबसे अधिक 26 प्रत्याशी मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 12 प्रत्याशी मधुबनी संसदीय क्षेत्र में हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी, सारण और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्रों में 14-14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सारण संसदीय क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी और राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के बीच माना जा रहा है। हाजीपुर सुरक्षित सीट पर मुख्य मुकाबला एनडीए प्रत्याशी लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और राजद के शिवचंद्र राम के बीच है। वहीं सीतामढ़ी में एनडीए प्रत्याशी जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर और राजद के अर्जुन राय आमने सामने हैं। मधुबनी में भाजपा के अशोक यादव और राजद के अली अशरफ फातमी के बीच मुख्य मुकाबला है। इधर मुजफ्फरपुर संसदीय सीट पर भाजपा के राजभूषण चौधरी निषाद को कांग्रेस के अजय निषाद चुनौती दे रहे हैं। 35 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। सारण संसदीय क्षेत्र में सारण जिले से उत्तर प्रदेश के अलावा पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीवान जिले से लगने वाली सीमा को सील कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दियारा क्षेत्र और नदी वाले क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरती जा रही है।
सारण संसदीय क्षेत्र में सारण जिले से लगने वाले उत्तर प्रदेश के अलावा पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीवान जिले से लगने वाले सीमा को सील कर दिया गया। सारण संसदीय क्षेत्र में लगभग 18 लाख मतदाता 14 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए 800 से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। सोनपुर, परसा और छपरा क्षेत्र के दियरा वाले इलाके में विशेष चौकी बरती जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा चुकी है। युवा वर्ग, महिला और दिव्यांग वोटरों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कई मतदान केंद्रों को केवल महिला कर्मियों और युवा चुनाव कर्मियों द्वारा संचालन करने की व्यवस्था की गई है। वहीं आदर्श मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए छपरा से पवन कुमार सिंह।
हमारे संवाददाता ने बताया कि हाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग 20 लाख मतदाता कल 14 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे।
हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में भयमुक्त, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 58 कंपनियों को तैनात किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी यशपाल मीणा ने बताया कि मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए जिला मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। गर्मी से बचाव के लिए छाया, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था सहित मतदाताओं की सुविधा के लिए पोलिंग बूथों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत हाजीपुर, मायनार, राघोपुर, राजापाकर, लालगंज तथा महुआ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह।
हमारे संवाददाता ने बताया कि मुजफ्फरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में कल 18,66,000 से अधिक मतदाता 26 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। इस संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों गायघाट, औराई, बोचहा, सकरा, कुढ़नी और मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दियारा क्षेत्रों में विशेष घुड़सवार दस्तों को तैनात किया गया है। संवेदनशील मतदान केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी मतदाताओं से कल के लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक।
हमारे सीतामढ़ी संवाददाता ने बताया कि कल होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
सीतामढ़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कल लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत मतदान को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। 19,47,000 से अधिक मतदाता 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव कर्मियों का दल सुरक्षा बलों के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। एहतियात के तौर पर जिले में नेपाल से लगने वाले क्षेत्रों सोनबरसा और भिट्ठा मोड़ पर सीमा को सील कर दिया गया है। दोनों ओर से मतदान की समाप्ति तक आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में महिला कर्मियों द्वारा संचालित एक एक पोलिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। वहीं एक एक युवा चुनाव कर्मियों द्वारा संचालित पोलिंग बूथ और आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। दिव्यांग जनों द्वारा संचालित एक मतदान केंद्र भी स्थापित किया गया है। जिलाधिकारी रुचि पांडे ने बताया कि 969 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार।
हमारे मधुबनी संवाददाता ने बताया कि मधुबनी संसदीय क्षेत्र में 1939 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
मधुबनी संसदीय क्षेत्र में कल 19,34,000 से अधिक मतदाता 12 प्रत्याशी की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। मधुबनी संसदीय क्षेत्र में 634 मतदान केंद्र दरभंगा जिले के केवटी और जाले विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। वहीं शेष मतदान केंद्र मधुबनी जिले के हालाकी, बेनीपट्टी, मधुबनी और बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में शामिल है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर हालाकी क्षेत्र में सीमा को सील कर दिया गया है और मतदान की समाप्ति तक आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIR News पटना पर भी सुने जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम दो चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा के 4 चरणों के चुनाव में भाजपा को अपार जन समर्थन मिला है। पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र के बेतिया में आज चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने दावा किया कि 4 चरणों में ही एनडीए 270 सीटों का आंकड़ा हासिल कर चुका है। श्री शाह ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग आरक्षण और संविधान को लेकर झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन करने का आरोप लगाया है।
ये लालू जी की पार्टी को 4 भी नहीं मिल रहा और राहुल बाबा को 40 भी नहीं मिल रहा। इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला। भाइयों बहनों, ये इंडी गठबंधन जो है, ये झूठ का व्यापार करने वाले लोग, झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर राजनीति में विजय प्राप्त करना चाहते। ये कहते हैं कि मोदी जी 400 पार होंगे तो आरक्षण हटा दे। बेतिया वालों, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। मैं आज आपको बताने आया हूँ, 10 साल से मोदी जी के पास पर्याप्त बहुमत है। मोदी जी ने कभी आरक्षण को हाथ लगाया है क्या? बताइए भाई।
इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि उनकी पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करती है। श्री रमेश ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मुस्लिम धर्म में कुछ जातियां आरक्षण के दायरे में आती हैं, उसी के आधार पर कर्नाटक में इन्हें आरक्षण दिया गया है।
हमने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। जो हमने आरक्षण दिया है कर्नाटक में और अलग राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार रही है, वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर। ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों में भी ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर उस सूची में आ जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में श्रेय लेने की कोशिश की है कि अल्पसंख्यकों की जातियों को मैंने आरक्षण दिलवाया था, उन्होंने खुद कहा है। पर ये जो हमारा संविधान है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को सीवान और पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। श्री मोदी कल शाम बिहार दौरे पर पटना पहुंचेंगे। और आइए अब सुनते हैं राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला। आज बात काराकाट लोकसभा सीट की।
वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए काराकाट लोकसभा के अंतर्गत औरंगाबाद और रोहतास जिले के तीन तीन विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सोननाथ से विभाजित होने वाले इन दो जिलों की अर्थव्यवस्था, मन मिजाज और बोली बाणी एक दूसरे से अलग है। रोहतास का मन मिजाज भोजपुरी तो औरंगाबाद मगध का इलाका है। इन दोनों जिलों के मतदाताओं और सामाजिक समीकरणों को एक साथ साधना काराकाट के प्रत्याशियों के लिए चुनौती भरा होता है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में जदयू के महाबली कुशवाहा, 2014 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू के महाबली कुशवाहा को इस सीट से जीत मिली। एनडीए में सीट बंटवारे के तहत इस बार काराकाट सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में आई और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खुद इस सीट से उम्मीदवार हैं। उनके सामने हैं विपक्षी गठबंधन से भाकपा माले के राजाराम सिंह। राजाराम सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए अब तक हुए सभी चुनाव में उम्मीदवार रहे हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस बार राजद, कांग्रेस और वीआईपी के समर्थन से वे मजबूती से चुनाव मैदान में हैं। वहीं भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। पवन सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से दोनों ही प्रमुख गठबंधनों के उम्मीदवार के लिए लड़ाई चुनौतीपूर्ण हो गई है। पवन सिंह ने काराकाट के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। विधानसभावार शक्ति संतुलन देखे तो सभी 6 सीटों पर विपक्षी गठबंधन का कब्जा है। नोखा, डेहरी, गोह, औरंगाबाद और नबी नगर पर राजद के, जबकि काराकाट सीट पर भाकपा माले के विधायक हैं। काराकाट की जनता के लिए आज भी विकास प्रमुख चुनावी मुद्दा है। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं भाकपा माले के राजाराम सिंह बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर लोगों को गोलबंद करने में जुटे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह कहते हैं कि क्षेत्र की हर समस्या का समाधान ही उसकी प्राथमिकता होगी। बहरहाल 13 उम्मीदवारों के बीच जनता किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताती है यह देखना काफी दिलचस्प होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए काराकाट से चंदन कुमार।
पूर्वी चंपारण जिले में रक्सौल थाना क्षेत्र के नागा रोड में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 60,18,000 रुपए से अधिक नेपाली और 34,00,000 रुपए से अधिक भारतीय नोट जब्त किए हैं। इस संबंध में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। इधर कैमूर जिले में वाहन जांच के दौरान भभुआ कुदरा पथ पर अकोली गांव के पास चेक पोस्ट पर जांच के दौरान एक कार से 14,00,000 रुपए से अधिक नकद रुपए जब्त किए गए हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतर जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत हाजीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण और मुजफ्फरपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच कल होगा मतदान। 95,00,000 से अधिक मतदाता चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूड़ी, रोहिणी आचार्य, अली अशरफ फातमी, देवेश चंद्र ठाकुर समेत 80 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। 6वें और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बेतिया में जनसभा को संबोधित किया। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने गोपालगंज, वाल्मीकि नगर और सीवान सहित कई क्षेत्रों में की जनसभा। और मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।